बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सदर ईरान का दौरे न्यूयॉर्क। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, सदर डॉक्टर हसन रूहानी न्यूयॉर्क का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके सनीचर को तेहरान वापस पहुंच गए। उन्होंने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब बताया है। आलमी मीडिया ने भी इस दौरे में ईरान की कामयाब सफारतकारी को सराहा है। आखिरी लम्हात में अमरीकी सदर बाराक ओबामा का टेलीफोन और दोनों सुदूर की 15 मिनट की गुफ्तगू को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अमरीकी सदर ने ईरान के सदर से टेलीफोनी गुफ्तगू के बाद सहाफ़ियों को बताया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हल के हवाले से मुज़ाकराती अमल इस गुफ्तगू का ख़ास मौजू था, जिसके बारे में तय पाया है कि दोनों सुदूर अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों को हिदायत देंगे कि मुज़ाकरात में मुस्बत रवैया और इत्तेफाक़ राय तक जल्द अज़ जल्द पहुँचने का रास्ता अख्तियार करें। आज के प्रोग्राम में हम पहले ईरान के सदर के इस दौरे की अहमियत और उसके असरात के बारे में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय मालूम करेंगे। इसके बाद इस दौरे में ईरानी वफ्द की सफारतकारी ज़ेरे बहस आएगी। इसके साथ ही दोनों मुल्कों के सुदूर की टेलीफोनी गुफ्तगू पर भी बहस होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस टेलीफोनी गुफ्तगू के आलमी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान के ताल्लुक से अमरीका के रवैये में जो मुसबत तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं उसके मुहर्रिकात पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी का दौरा न्यूयॉर्क ईरान ही नहीं दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की सुर्खियों की जीनत बना। मगरबी ज़राए इब्लाग में तो शायद ही किसी सरबराह मुमलिकत को इतनी कवरेज मिली हो जितनी कवरेज डॉक्टर हसन रूहानी की तकारीर, इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसों को मिली। सदर हसन रूहानी ने अपनी टीम के साथ 5 दिन न्यूयॉर्क में गुजारे और ये 5वें दिन इंतहाई मसरूफ गुजरे। सदर हसन रूहानी ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब में एटमी मसले, ईरान अमरीका ताल्लुकात, शाम और बहरीन के हालात, मसले फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान पर लश्कर कशी के बाद पेश आने वाली सूरत हाल जैसे अहम इलाकाई और आलमी मसाइल के सिलसिले में ईरान का मौकिफ खुलकर बयान किया। सदर हसन रूहानी की तकरीर में इस नुक्ते पर खास तौर पर ताकीद की गई कि दुनिया में मसाइल बहुत हैं, लेकिन इन मसाइल का हल फौजी हमला नहीं सियासी मुज़ाकरात हैं। सदर हसन रूहानी ने अपने खिताब में इस नुक्ते पर भी ताकीद की कि एकतरफा पॉलिसियों के बजाय हर इलाके की मकामी ताकतों के साथ तआवुन के जरिए मसाइल को हल किया जाना चाहिए। सदर हसन रूहानी ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नावाबस्ता तहरीक की जानिब से मुनक़्क़दा जौहरी असलहे की नाबूदी के बारे में इजलास में कहा कि इन हथियारों को बनाने का जवाब पेश करने वाली कोई भी स्ट्रेटजी काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो जारहाना हो या दिफाई। सदर हसन रूहानी ने पुरम दुनिया के क्याम को सभी का मुश्तरक हदफ बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी शक्ल में जौहरी असलहे का इस्तेमाल न सिर्फ ये कि अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर की मुखालफत है बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म भी है। सदर रूहानी ने अमरीका के सियासी और दीनी मुफक्किरीन की कौंसिल के इजलास से भी खिताब किया। अमरीका में पॉलिसी साजी के अमल में इंतहाई मौसर समझी जाने वाली इस कौंसिल से खिताब करते हुए सदर हसन रूहानी ने ईरान का उसूली मौकिफ बयान किया। अमरीका में मुकीम ईरानियों से भी सदर हसन रूहानी ने खिताब किया और कहा कि गैर ममालिक में मुकीम ईरानी सरजमीन ईरान के सफीर हैं और ईरान के हकायक दुनिया के सामने पेश करने के सिलसिले में हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जरतुश्ती, अरमनी, आशूरी सभी अकलियतें सरजमीन ईरान की खूबसूरती का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने न्यूयॉर्क में मुतअद्दिद मुल्कों के आला रुतबा हुक्काम से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और तआवुन के मौजू पर भी गुफ्तगू की। जापान के वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे, शाम के उमूर में अक़वामे मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे अख़्ज़र इब्राहिमी, हस्पानवी वज़ीर आज़म मारियानो राखोए, फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलैंड, यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सरबरा हरमैन वान रेम्पोए, श्रीलंका के सदर राजा पक्षे, पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, इटली के वजीर आजम और दीगर सरबराह ने मुमलिकत से सदर मुमलिकत ने अलहदा अलहदा मुलाकातें की। अतालवी वजीर आजम एनरिको लेटा के साथ मुलाकात में सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के तवानाई के शुबे पर आयद की जाने वाली पाबंदियों का पुरम जौहरी सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। जुमे के रोज वतन वापसी से कबल अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी सदर हसन रूहानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और एटमी मसले के हल के लिए कोशिशें आगे बढ़ाने के अज़्म का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर मुश्किलात और रुकावटें आएंगी, लेकिन नतीजे तक रसाई की बाबत हमें एतमाद है। ईरान और अमरीका दोनों ने इस टेलीफोनी गुफ्तगू की तस्दीक की है। 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद दोनों मुल्कों में आला तरीन सतह पर यह पहला बराह रास्त राबता है। सदर ईरान के दौरे को मजमू तौर पर अहम समझा जा रहा है और हालात ने ऐसा रुख अख्तियार किया है कि इसराइल को शदीद तशवीश लाहिक हो गई है। इसराइली हुकाम ने दौरे से कबल ही मनफी माहौल पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है।
नाज़रीन, सदर ईरान के दौरे न्यूयॉर्क की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के एक मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर साकिब अकबर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। साकिब अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब, ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी न्यूयॉर्क का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान वापस आ गए हैं। उनके इस दौरे के बारे में आपका तजिया क्या है? ये दौरा कितना कामयाब करार दिया जा सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि चंद निकात जो हैं वो उनके जाने से पहले ही बहुत ही नुमाया तौर पर सामने आ रहे थे। एक तो ये कि शाम के मसले पे जो आलमी इस्तेमारी ताकतों की जो कोशिश थी वो बहुत ही बुरी तरह से नाकामी से दोचार हो चुकी थी। इसराइल और इलाके के जो हवारी हैं और जो अमेरिका के उनकी बहुत बेपनाह कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को और बाकी उसके साथियों को इस जंग में झोंक दिया जाए या धकेल दिया जाए, लेकिन ईरान ने इस सिलसिले में जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, फिर रूस ने जिस तरह से ईरान और शाम के मौक़िफ़ को जिस तरह से सपोर्ट किया उसने, और जो बाकी इलाके की कुव्वतों ने अपना मौक़िफ़ कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो क्या इख्तियार करेंगी, उसके बाद पूरी की पूरी बाजी जो है वो पलट गई। इस तरह से ईरान एक इस खित्ते का और भी ज़्यादा मुअस्सर और ताकतवर मुल्क बनकर उभर के सामने आ चुका था कि डॉक्टर हसन रूहानी ने यह दौरा किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर हसन रूहानी को जिस तरह से कामयाबी मिली है इंतखाबात में और जिस तरह प्रोपोगंडों और उसके बावजूद अवाम ईरानी अवाम ने इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पे, जैसा कि कहा जाता है कि 72.3% लोगों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया, तो इससे वो एक जमहूरी मुंतखब एक ऐसे सदर की हैसियत से भी वहाँ गए कि जिनको अवाम की एक पॉपुलर हमायत जो है वो हासिल थी। तो मेरा ख्याल है इस सारी सूरत हाल ने एक पहले, इसी तरह से डॉक्टर हसन रूहानी ने जैसे कि खुद कहा कि उनके जाने से पहले ही अमरीका की तरफ से जो है ये रबते किए जा रहे थे कि डॉक्टर हसन रूहानी जो हैं वो अमरीकी सदर से मिल लें, बल्कि उनका कहना यह है कि जाने से पहले भी उन्होंने ख्वाहिश की और जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त भी उनकी तरफ से ये ख्वाहिश, इस ख्वाहिश का इजहार जो किया गया। मेरा ख्याल है आम तौर पर दुनिया में ये अचंभे की बात है कि अमरीकी सदर किसी मुल्क के सरबराह, वो भी तीसरी दुनिया के एक मुल्क के सरबराह के साथ मुलाकात की बार बार ख्वाहिश करे और इधर से ये समझा जाए कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है मुलाकात का, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर हसन रूहानी ने जो वहाँ पे तर्ज़ अमल इख्तियार किया, अगर उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये तर्ज़ अमल ही की खूबसूरती है जो डॉक्टर हसन रूहानी के खाते में जाती है, वरना ईरान का मौक़िफ़ तो जौहरी मसला हो या बाकी दुनिया में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मसला हो या बड़ी ताकतों के इस खित्ते में और बाकी दुनिया में इन्वॉल्वमेंट का मसला हो, اور یا ایران عراق جنگ کا مسئلہ ہو یا باقی سارے عراق کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، ڈرون حملوں کا مسئلہ، جو بھی ایران کا نقطہ نظر ہے، ڈاکٹر حسن روحانی نے بڑے عمدگی سے ویسے ہی پیش کیا ہے جیسے کئی گزشتہ دہائیوں سے ایران کا نقطہ نظر مختلف ایشوز پہ رہا، بلکہ سیریا کے مسئلے پہ بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے وہی نقطہ نظر اختیار کیا، جمہوریت کے مسئلے پر بھی جو ایران کا موقف رہا ہے، لیکن ڈاکٹر حسن روحانی کی کامیابی میرا خیال ہے اس میں سمجھی جائے اور ان کی ٹیم کی کہ انہوں نے اسی بات کو اس دفعہ اس انداز سے اور اس پیرائے میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ایک دفعہ نہ فقط یہ کہ دنیا حیرت میں کھو گئی بلکہ یہ کہ ایران کی جو کا موقف ہے وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہے، اگر عالمی میڈیا کے اس طرز عمل کو اس دفعہ جو جس طرح سے انہوں نے مختلف ایشوز جو ڈاکٹر حسن روحانی نے اٹھائے ہیں اس کے جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے ایک ایک ایشو کو، اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے جیسے جن چار پانچ بڑے معاملات کو یا شخصیات کو جن میں خود پریزیڈنٹ اوباما بھی شامل ہیں یعنی جن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان چند افراد میں ڈاکٹر حسن روحانی اور ایران کی ٹیم کی کا جو وہاں پہ رول ہے اس کو میرا خیال ہے اس میں شمار کیا جا سکتا ہے، دنیا بھر کے مشرق و مغرب کے ممتاز جو ٹی وی چینلز ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، جو ریڈیوز ہیں، اخبارات ہیں دنیا کے بڑے بڑے، انہوں نے ڈاکٹر حسن روحانی کے وہاں کی یو این او کی تقریر کو اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے، بلکہ حیرت تو اس بات پہ ہے کہ وہ ریڈیو اسٹیشنز یا وہ چینلز جو دن رات ایران کے خلاف اپنا طرز عمل جن کا رہا ہے اور جن کی خبروں کا رخ، جن کے تجزیوں کا رخ ایران کے خلاف رہا ہے، وہ بھی اس دفعہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران کا جو ہے مثبت چہرہ جس انداز سے ڈاکٹر حسن روحانی نے پیش کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ آخری بات جو میرا خیال ہے خلاصہ جو ابتدائی کے طور پہ مجھے آپ سے کہنا وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جتنی ایکٹیویٹیز رہی ہیں ڈاکٹر حسن روحانی اور ان کی ٹیم کی اور اس میں جو تنوع ہے اور اس میں جو ورائٹی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ ان کے اسمبلی کا جو خطاب ہے وہ بڑا کمپریہنسو اور بڑا عمدہ ہے، بلکہ ان کا جو باقی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح ہیڈ آف دا اسٹیٹس، ہیڈ آف دا گورنمنٹس، ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں، ان کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن ہوا ہے، جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو ان کے اہم ترین جو چینلز ہیں اور ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا انٹرویوز ہوئے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے اجتماعات سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ساری اپنی جگہ پر اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نہ فقط یہ کہ ایک چھوٹے سے دنیا کے باقی ممالک بڑے ملکوں کو اگر سامنے رکھا جائے چائنا، رشیا وغیرہ، تو اس کے مقابلے میں جتنی میرا خیال ہے بھرپور ایکٹیویٹیز اور جتنی کوریج ڈاکٹر حسن روحانی اور ان کے وفد کو ملی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور آخر میں یہ بات میرا خیال ہے نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے اس میں ڈائریکٹ ایسا اناؤنسڈ اور بالکل انٹریکشن جو ایران کے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے درمیان ہوا یہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب،
پوری دنیا کی سیاست میں اس کو ایک کئی دہائیوں کے بعد ایک بڑے بریک تھرو کے عنوان سے دیکھا جائے گا، ایک دفعہ گزشتہ ایک ایرانی صدر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ اپنا کوئی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایران کے یعنی یہاں سے ایران کے اندر سے کوئی ایرانی پریزیڈنٹ کے عنوان سے کوئی صاحب جو ہے امریکہ سے کچھ کال آتی رہی اور ان کا رابطہ رہا، میرا خیال ہے وہ سازشوں کے جو دور تھے اور اس طرح کے اس یہ جو انٹریکشن ہے اس نے ان کو بھی ختم کر دیا۔
جی بہت بہت شکریہ،
وہ اس طرح سے کھل کے سامنے آئی اور ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم مناسب اس کی تیاری اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ملاقات کریں گے،
جی شکریہ،
اس لیے ہم نے اس ملاقات کو فی الحال قبول نہیں کیا۔
جی بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب۔ اور ناظرین چلتے ہیں لندن جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی موجود ہیں۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی زیدی صاحب، ڈاکٹر حسن روحانی نے ईरान के सदर की हैसियत से पहली बार जनरल असम्बली के सरबराही इजलास और दीगर इजलासों से खिताब किया और अमेरिका के मुख्तलिफ टीवी चैनलों से गुफ्तगू की। आपके ख्याल में वो अपने इस दौरे में ईरानी कौम और दुनिया की दीगर मजलूम अकवाम के हकूक़ का दिफा करने में कितने कामयाब रहे?
जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। उनका ये दौरा बहुत कामयाब दौरा है और बहुत अहम दौरा है
जी।
और उनका तमाम तर जो मुलाकातें हैं, उनके जो बयान हैं
जी,
उसमें टोन डिफरेंट है, लेकिन ईरान की जो बासूल उनकी फॉरेन पॉलिसी या उनके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर, वो कंटिन्यूटी है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आती जिसको ये कहा जाए कि ये ईरान शायद अपने मौकफ से कहीं इधर उधर हुआ है। ईरान हमेशा ही मजलूम और महकूम अकवाम की के हक़ में बात करता रहा। ईरान ने हमेशा ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की। ईरान ने हमेशा अपने जौहरी तवानाई के हक़ को मांगा और दुनिया को बताया कि ये हमारा हक़ है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस एतबार से ये वो तमाम कंटिन्यूटी थी जिसको इन्होंने बहुत पोलाइट और बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया, जिसको एक्सेप्टेबिलिटी भी मिली और इसकी पजीराई भी हुई है
जी।
पूरे वेस्ट मैं समझता हूँ इस वक्त इनके इस दौरे पर और इनके हर हर लफ्ज़ और कॉमा फुल स्टॉप पर उनकी नज़रें और उनके कान थे। इनका ये कहना कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अमेरिका से बात करेंगे, ये बहुत अहम बात है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे रीजन में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है
जी,
वो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उस रीजन में, उनको इस लफ्ज़ से बहुत बेचैनी नज़र आती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में डेवलप होता है तो फिर सऊदी अरब और इज़राइल और कतर और इन सब लोगों का जो सियासी हाजमा है वो बिगड़ना शुरू हो चुका हुआ है और उसका इजहार नज़र आ रहा है। इस तरह से कि पिछले यानी इसी दौरे इनके दौरे के दौरान जो अमेरिका इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है
जी,
उसने अपनी मुतालबात सेनेट के सामने रख दी हैं और मुतालबात ये हैं कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पे अपने एटमी प्रोग्राम से नहीं हटता और हत्ता के वो अपना तमाम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी अपने मुल्क से बाहर शिफ्ट नहीं करता, तो अमेरिका को जो सैंक्शंस हैं वो नहीं उठानी चाहिए। और इस तरह से ये जो अमेरिकन इजरायली लॉबी है वो काफ़ी परेशान नज़र आती है और उन्होंने अपना प्रेशर बिल्ड किया है। और मंडे को नतन्याहू ओबामा से मिल रहे हैं, तो अगर उस रीजन में म्यूचुअल इंटरेस्ट जो कि अमेरिका और ईरान का म्यूचुअल इंटरेस्ट मींस के रीजन में एक अमन, उस इलाके में एक जो ये अरब जो अरब लीग और सऊदी अरब और कतर और उन्होंने जो गंद टर्की की मदद से पैदा किया हुआ है, उस गंद से सफाई और एक ऐसे तरक्की याफ्ता मिडल ईस्ट की तरफ रास्ता का इख्तियार करना जिसमें अवाम की फलाह बहबूद हो और उस रीजन में तरक्की आ सके और जंग से वो इलाका पाक हो जाए, तो ये वो म्यूचुअल इंटरेस्ट है जो कि अमेरिका को भी सूट इसलिए करेगा कि अब वो ज़्यादा जंगें ना लड़ सकता है ना जंगों को मुसल्लत कर सकता है
जी।
और ये जंग जो बिल्कुल वो वीकेंड पे तैयार था मिलिट्री एक्शन लेने के लिए ईरान के खिलाफ, उसको जिस तरह से पुतिन ने ईरान ने और हज़बुल्लाह ने और फिर यहाँ बरतानिया में जो लेबर पार्टी की लीडरशिप है उसने जिस तरह से कैमरॉन को शिकस्त दी पार्लियामेंट में, ये एक बहुत बड़ा कदम है इस जानिब के दुनिया अब जंग नहीं चाहती, अमेरिका के अवाम भी जंग नहीं चाहते, दुनिया भर यूरोप के अवाम जंग नहीं चाहते, सियासतदान जंग नहीं चाहते। जो जंग चाहते हैं उनका अब जो आवाज़ है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही। उनका इंटरेस्ट जो था, जो असले के सौदागर हैं, इसराइल है और रीजन में सऊदी अरब का जो अपना इंटरेस्ट है वो ख़तरे में है। उसके अलावा दुनिया भर के अवाम अब मिडल ईस्ट में एक तरह का अमन चाहते हैं और तमाम के तमाम इस बात पर खुश हैं, वेस्ट में बिलखसूस, जो सारे न्यूज़ पर और मीडिया के थ्रू जो नज़र आया और जो हमारी सियासी हवाले से बातें भी रहीं, के सब इस जानिब हैं कि ये एक आइस ब्रेक हुई, एक अच्छा कदम है, एक इब्तदा हुई है और एक अच्छे मंजिल की जानिब कदम उठाया गया है, जहाँ पर दुनिया में शायद अमन सुकून कायम हो सके और इंसान जो मज़लूम और महकूम अवाम हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वो शायद सर उठाकर चलने का उन्हें हौसला भी मिले और उनको एक फ़िज़ा मिले जहाँ पर वो अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें। तो इस लिहाज से ये दौरा बहुत अहम है और ख़ास तौर से जो गुफ्तगू हुई है 15 मिनट की डॉक्टर रूहानी और ओबामा के दरमियान, वो बहुत अहम है, जिसमें डॉक्टर रूहानी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया न्यूक्लियर उस पर, और उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत साफ था कि ये प्री मेच्योर मीटिंग होती अगर हो जाती, और ओबामा इस कोशिश में थे कि किसी तरह से एक लंच इनके साथ वो करके उसके बाद तस्वीरें उतरवाएं और हाथ मिलाकर अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए हाथ मिलाकर अपनी पॉपुलैरिटी को में इजाफा करें, जो कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है शाम के हवाले से या अदरवाइज, तो वो उनकी हवाले से तो शायद ठीक था, लेकिन इन्होंने बहुत मोहतात रवैया अख्तियार किया, जो कि मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत थी। इमीडिएटली अमेरिका से फौरन हाथ मिलाना बहुत है, ये जल्दी का काम होता, और इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो बहुत सराहा जा रहा है कि इट वाज अ प्रीमैच्योर अगर होती मीटिंग, और इन्होंने जो ये वहाँ एक प्रॉमिस किया कि विद इन 3 वीक्स 15 और 16 अक्टूबर को हम जनेवा में अपना रोड मैप देंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किस तरह पेशरफ्त हो सकती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब,
ये बहुत कामयाब दौरा था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं कराची, जहां पाकिस्तान के एक मुमताज़ दानिश्वर और तज़किरा निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आप कैसे मिजाज हैं?
जी आवाज में कुछ प्रॉब्लम।
बिल्कुल आवाज
है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब सदर ईरान के दौरे न्यूयॉर्क की खास बात आपकी नजर में क्या है? चलते हैं तब तक साकिब अकबर साहब से।
देखिए जी, सदर ईरान का जो जी इस वक्त मौकिफ है उसका मैं समझता हूँ कि आलमी सियासत पे
जी
एक बड़ा मुस्बत रद्द अमल हुआ है
जी,
और ओबामा ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में
जी
ईरान के बारे में जो कुछ कहा तो उसका लब लहजा बिल्कुल बदला हुआ था
जी,
और सबसे अहम बात जो उसने की मेरे नजर से वो अमेरिका ने कभी नहीं की थी
जी।
उसने ये कहा कि हम ईरान के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम हुकूमत को नहीं बदलना चाहते
जी,
और हम तरजीह देंगे जो हमारा जौहरी तनाज़ा है ईरान के साथ तो उसका हम पुरअमन हल निकालें। साथ ही उन्होंने जाहिर सी बात है कि अपनी बात रखने के लिए अपने पुराने मौक़िफ को दोहराया कि हम किसी सूरत में ईरान को जौहरी असलाह हासिल नहीं करने देंगे। तो सद ने तो फौरनी पहले ही कह दिया था
जी जी।
और ईरान के रूहानी पेशवा ने भी ये कह दिया था कि हम तो इसे मजहबन हराम समझते हैं
जी।
और हमारा तो जौहरी असला बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अपने उसूली मौके पे वो अटल रहे। और मैं समझता हूँ कि इसका मजबूत रद्दमल होगा कि जौहरी असले को पुरमन इस्तेमाल करने के हक से ईरान को कोई दस्तबरदार नहीं होने पर मजबूर कर सकता। इस वजह से कि देखिए, जो जौहरी असले के अदम फैलाव का माहदा है
जी जी।
उसकी सख्तार में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है
जी।
कि जहाँ हम एटमी असले के फैलाव को रोकना चाहते हैं वहाँ उन्होंने वाज़े कर दिया कि जौहरी तवानाई को पुरम मकासद के लिए इस्तेमाल करने पे हम कोई कदम नहीं आयद करेंगे
जी।
तो अमरीका ईरान को इस हक से महरूम करता रहा है
जी।
जो कि इस माहदे की शिख चार में तमाम रुकन रियासतों को दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता ऐसा है कि इस पे ईरान एक अटल मौकफ अख्तियार करेगा
जी।
और अगर फर्ज कीजिए कि मुज़ाकरात नाकाम होते हैं आर्जी तौर पे, तो वो इसी बात पे नाकाम होंगे। अमरीका को यहाँ लचक दिखाना चाहिए, लेकिन उसको इशार करेगा कि हम उन तनसीबात में जाना चाहते हैं, रसाई हासिल करना चाहते हैं जो ईरान ने अपने दिफाई मकासद के तहत उसको इस्तिस्ना कर रखा है मुआयनेकारों की तफ्तीश से। तो ये मसला ज़रूर मैं समझता हूँ कि कुछ तातुल का शिकार इससे मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और अगर अमरीका ने लचक दिखाई तो मैं समझता हूँ कि मसला यानी देर से हल होगा, लेकिन मसला हल होगा। कम अज़ कम इस वक्त तो जो ईरान पे अमेरिका के हमला करने की जो तकरार थी
जी जी।
तो उसको तो अमेरिका ने अब नहीं दोहराया, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही मजबूत रद्दमल हुआ है ईरान के सदर के मौकफ का
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। जनाब साकिब अकबर साहब, ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद न्यूयॉर्क में मुख्तसर सही लेकिन ईरान और ग्रुप 5+1 के मुज़ाकरात के मौके पर दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की दो तरफ़ा मुलाकात और बराह रास्त गुफ्तगू हुई और आखिरी लम्हात में सदर रूहानी के पास अमरीकी सदर का टेलीफोन आया। इस सूरत हाल के बारे में आपका तज़िया क्या है?
मेरा ख्याल ये है कि अगर हम गुज़श्ता चंद सालों की डेवलपमेंट्स को देखें दुनिया की और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप की इक्तसादियात को देखें तो बहुत ही मुश्किलात का शिकार रही है। और कई मुल्क जो हैं यूनान समेत वो तो बिल्कुल यानी दिवालिया उनको वो हो चुके थे तकरीबन, और उनको बाकी यूरोपियन यूनियन ने जो है वो इंटरवीन करके और खसूसी मदद करके पैकेज दे के उनको जो है वो बचाया है। इसी तरह से दूसरी बात यह है कि मगरबी दुनिया के लोगों ने सारी जंगों को नापसंद करके और इनकी पॉलिसियां जो हुक्मरानों की हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो इराक के ऊपर हमले का मसला हो, चाहे वो बाकी उनकी जो है वो जंगी हिकमत अमली हो। बल्कि ओबामा तो आए ये कह के थे कि हम अमन की तरफ जाएंगे, उनको तो वोट ही बुश की पॉलिसियों जंगी और जुनून पर मबनी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मिला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसका सबक हासिल नहीं किया और एक लंबा टेन्योर उन्होंने तकरीबन उन्हीं पॉलिसियों को जो है वो जारी रखा, लेकिन आवाम ने इस सारे सिलसिले को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपेशन जो मूवमेंट चली थी उसके असरात अभी तक अमेरिका के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जो पैगाम देते हैं कि हम मज़ीद ये जंगी जुनून वाली हिकमत अमली जो है इसको कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह से अमेरिका को पहली मर्तबा हुआ कि शाम के ऊपर वो हमला करने चला और बरतानिया जो सबसे ज़्यादा उसका अलाई है समझा, बल्कि हमारी ज़ुबान में कहते हैं दुमछल्ला समझा जाता था, सबसे पहले उसी ने इनकार कर दिया कि हम उसकी पार्लियामेंट ने जो है वो रिजेक्ट कर दी इस तजवीज़ को कि बरतानिया जो है वो फौजी हमले में उसका साथ देगा। तो इस तरह अमरीका खुद अदियों में भी कमज़ोर हो गया। इस तरफ जो सूरत हाल जो ख़तरा दरपेश हुआ, एक तो ये कि आवाम यके बाद दीगरे उठ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो ज़ाहिर है अमरीका को इस बात का ख़तरा तो मौजूद है कि सऊदी अरब में भी जॉर्डन में भी कतर में भी एक दिन लोग उठेंगे और तब्दीलियाँ जो हैं वो आएंगी। ये हालात को सामने रख के अगर देखा जाए और तो ये जो शाम के मसले पर जो डिफीट हुई है इस सारे तनाजुर में हमें, मेरा ख्याल है, ये जो आखिरकार अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर या प्रेसिडेंट ओबामा का और उनकी इंतज़ामिया का ये ख्वाहिश करना कि अब ईरान के साथ नेगोशिएशन का रास्ता जो है इख्तियार किया जाए, जिसके इशारे पहले से जो है वो देते चले आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है इस पस मंज़र में इस सारी नेगोशिएशन की और मुज़ाकरात की ख्वाहिश को जो है वो हमें देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हम देखेंगे कि ईरान की करेंसी पर इसके असरात होंगे, या वो ममालिक जो ईरान के साथ मजीद माहदे करना चाहते हैं उनको ज़रा सा एतमाद हासिल होगा। अभी आप देखें कि जब से वज़ीर आज़म हमारे मौजूदा आए,
जी,
उनके मिनिस्टर्स ने तो ज़रूर कहा कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का माहिदा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म ने खुल कर अब इस दफ़ा न्यूयॉर्क में ये बात की, तो अमेरिका ने ये देखा कि उनके जो इत्तहादी समझे जाते थे कन्वेंशनली, उन्होंने भी इस तरह से खुल के अब उनकी पॉलिसियों का साथ देना जो है वो छोड़ दिया है। तो मेरा ख्याल है ये दानिशमंदाना एकदम था कि आखिर दुनिया कब तक जो है वो एक अमेरिका की जो सल्तनत जो है उसका हिस्सा बनना जो है वो उसको कबूल करेगी। तो ये सारी तब्दीलियां जो हैं इन और ये जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है कि मजबूर किया है अमेरिका को कि वो ईरान के साथ जो है वो एक दरवाज़ा खोले या एक खिड़की खोले मुज़ाकरात की। और इसको मैं समझता हूँ कि ईरान की जो मुसलसल जुरतमंदाना मौकफ रहा है, आपने अभी भी उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने कहा है, तीन बातें उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पे प्रेसिडेंट ओबामा से डॉक्टर रूहानी ने की, एक तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कौमी हकूक का मसला है, ये जोहरी मसला जो है, दूसरा उन्होंने कहा कि ये ईरान की तरक्की से मरबूत मसला है, और तीसरा उन्होंने कहा कि ये सबसे बढ़कर अब हमारे कौमी इफ्तिखार का भी मसला है। ये जो उनका नुक्ता नज़र है, एक तो ये कि मुसलसल गुज़श्ता मौकफ की जो है वो उस पर उसकी तर्जमानी थी, और इसके साथ ये भी कि ईरान ने जो मुसलसल अपने हकूक के दिफा किया है उसने भी अमेरिका को मजबूर किया है कि आखिरकार हम कहाँ तक इसमें आगे जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें होप करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, जैसा कि प्रेसिडेंट रूहानी ने कहा भी कि हमें जो इंतखाबात में वोट मिला है वो हमारे आवाम की उम्मीद का वोट है, और एतदाल पर मबनी हमारी जो हिकमत अमली है उसकी हमायत का वोट है। तो मेरा ख्याल है इस सारे तर्ज अमल से एक होप जो है वो मजीद इसमें डेवलप हुई है। मेरा ख्याल है कि इस खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी इसका अच्छा मैसेज जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी जैदी साहब, जनाब ईरान के हवाले से अमरीकी रवैये में जो तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं, आपकी नज़र में उसके मुहर्रिकात क्या हैं?
जी, उसके मुहर्रिकात तो यकीनन वो दबाव है, आलमी दबाव, और आलमी दबाव से मुराद ये कि जंगों में अब कोई नहीं जाना चाहता
जी,
आवाम का दबाव भी है और हुक्मरानों ने भी उस तरह से दुमछल्ला बनना कबूल अब शायद नहीं कर रहे
जी,
जो इनके अलाइज थे। और उसके साथ साथ एक लंबा अरसा हो गया, यानी 1979 से लेकर अब तक ईरान पर सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाई गई, लेकिन ईरान ने अपना मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की, कोई लचक पैदा नहीं की, और अपना कौमी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उस पे वो कायम रहे। उसके नतीजे में ईरान कौम के तौर पर एक मजबूत कौम के तौर पर उभरी, लेकिन वेस्ट में जो तिजारती कौमें हैं ये सब की सब, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी मंडी से हाथ इनका इनके हाथ से चली गई, और यहाँ का जो ताजिर है उसने वो तमाम जो वहाँ से वो फैज़ हासिल करता था, तेल तिजारत हो या अखरोट की तिजारत हो, मतलब उस तमाम मंडी को ज़ाया करने के बाद जो यहाँ की ये बहुत बड़ी लॉबी है वो अपनी जगह, उनका एक प्रेशर था कि किसी तरह से ईरान के साथ एक बात शुरू की जाए। और अब मालूम नहीं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ईरान से अमेरिका, ओबामा ने ये बात, तो मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, कराची के जो हमारे दोस्त हैं उनके शायद इल्म में नहीं कि ओबामा ने ये बात तस्लीम कर ली है अपनी स्टेटमेंट में जो इशू हुई कि हम ईरान के जौहरी तवानाई के हक को तस्लीम करते हैं। ये बात इन्होंने पहले कभी नहीं कही थी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो ये प्रेशर थे दुनिया के, यानी माशी भी और सियासी भी, और सबसे बड़ा प्रेशर जो आया वो रिसेंटली, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो अमरीकी हल एक ही उनके पास था कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए, और मिलिट्री एक्शन के लिए वो तैयार थे शाम पर भी और अमेरिका पर भी जंग मसलत ईरान पर करने को, और इसराइल का भी जो हमेशा ये रहा कि ईरान को हम उस पर जंग तारी करेंगे, उसको उड़ा देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो जंगी जनूनियत थी इसके साथ देने के लिए अब दुनिया इनके साथ तैयार नहीं है, और ये एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से, यानी ये तो अब वेस्ट में सबको और बाकी सब जगह भी मालूम है कि पुतिन ने एक रिस्पेक्टेबल फेस सेविंग दे दी ओबामा को, केमिकल वेपन्स के आलमी ताकतों के जेर असर शाम के मामले पर। अदरवाइज तो ओबामा के पास कोई फेस सेविंग भी नहीं थी कि इतना बड़ा दूर जाकर वो 2 घंटे 4 घंटे बाद वो तो हमला करने की तैयारी में थे बैठे हुए, तो उनके लिए कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके या पशेमानी होती। तो पुतिन ने उनको ना सिर्फ ये कि पुतिन यहाँ की लेबर पार्टी, ईरान का मौकफ और असद यानी उनका जो शाम का स्टैंड है, और इन सब ने मिलकर इस बात पर अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपनी जंगी जनूनियत और वो जो एक बड़क मारने वाली जो उनका रवैया था उससे हटकर अब वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, मेज़ पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। सो मच सो कि उनकी बात को डॉक्टर रूहानी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी दावत को, जो कि बहुत बड़ी बात है, जबकि हमारे जो बहुत से सरबराहान ममलकत हैं वो तो उनसे कॉरिडोर में चलते चलते भी बात करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र आती है, इसमें आने वाले वक्त में लगता है कि मामलात जो बहुत टेढ़े हो चुके हैं शायद उनकी कोई शक्ल निकल आएगी। प्रेशर्स अपनी जगह हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ये जो अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है
जी।
और इसमें अगर आपको मैं रेफरेंस दूं पुरानी बात का कि न्यूयॉर्कर के जो राइटर हैं गोल्डबर्ग, उन्होंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा था कुछ अर्सा पहले कि वो स्टीव रोजन जो उस वक्त 2005 में इस कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे जब इन्होंने बात की कि इस कमेटी की अहमियत कितनी है, तो उन्होंने वो जो नैपकिन है यूं उठाकर फेंका और कहा कि अगर हम चाहें 24 घंटे के अंदर अंदर 70 सेनेटर इस ब्लैंक नैपकिन पर सिग्नेचर्स करने को तैयार हैं। गोया वहाँ पर उनकी इतनी बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। अब वो लॉबी कितना अपना असर रखेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि इसराइल इस बात से बहुत खुश नहीं है, और एट द सेम टाइम सऊदी अरब भी इस नई डेवलपमेंट से, इस नई सूरत हाल से खुश नहीं है। इन दोनों को खुश रखने के लिए ओबामा ने जो अपने एक और फिक्रा, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम ईरान से निगोसिएशंस करेंगे तो इन अपने जो एलाइज़ हैं इंक्लूडिंग इसराइल मिडल ईस्ट में जो हमारे एलाइज़ हैं उनको हम बाखबर भी रखेंगे और उनसे मशवरा भी करते रहेंगे। गोया अमेरिका को मालूम है कि इनकी तरफ से एक तरह की नाराज़गी का इजहार होगा, उसके बावजूद अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुकात استوار کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ یعنی ایک فیس سیونگ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی شرائط مجھے لگتا ہے کہ ماننے کو تیار ہو جائے گا، اور مجھے 6 مہینے تک کے دوران ایک بہت مثبت پالیسی نظر آئے گی، جس کے نتیجے میں اس پورے ریجن کی شاید سیاست میں تبدیلی آئے، اور بہت بڑی تبدیلی آئے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر شمیم اختر صاحب. جناب، اس تبدیلی میں عالمی حالات کا دخل